शमूएल की दूसरी पुस्तक अध्याय 19। योआब को इसकी सूचना इस प्रकार दी गई, अपने राजा रो रोकर अबशालोम के लिए विलाप कर रहे हैं। तब उस दिन विजय का हर्ष सारी सेना के लिए विलाप में बदल गया, क्योंकि सेना को यह बताया गया था, महाराज अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं। उस दिन की जीत की खुशी गहरी उदासी में बदल गई थी। फलस्वरूप सैनिक नगर में चुपके चुपके ऐसे प्रवेश कर रहे थे मानो वे लज्जित होकर युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भाग आए हो। राजा अपना मुखमंडल ढांप कर ऊंची आवाज में रो रहे थे, मेरे पुत्र अबशालोम, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। तब योआब ने उस कमरे में जाकर राजा से कहा, आज आपने अपने उन सभी अधिकारियों का मुख लज्जा से झुका दिया है जिन्होंने आपकी और आपके पुत्र पुत्रियों, पत्नियों और उपपत्नियों के जीवन की रक्षा की है। आप उनसे तो प्रेम करते हैं जिन्हें आपसे प्रेम नहीं, और उनसे घृणा करते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आज आपने यह साफ कर दिया है कि आपकी दृष्टि में ना तो अधिकारियों का कोई महत्व है ना सैनिकों का। आज मुझे यह मालूम हो गया है कि आज यदि अबशालोम जीवित होता और हम सभी मृत, तो आपको अत्यंत हर्ष होता। अब ऐसा कीजिए, उठिए, बाहर आइए और अपने सैनिकों से सांत्वनापूर्ण शब्दों में बातें कीजिए, नहीं तो जीवित यहावे की शपथ, यदि आप यह न करेंगे, एक भी सैनिक आज रात आपके साथ देखा ना जाएगा। यह आपके लिए ऐसी किसी भी विपता से कहीं अधिक सोचने लायक होगा जो आपके बाल्यकाल से आज तक आप पर ना आन पड़ी है। तब राजा उठे और नगर द्वार पर जाकर बैठ गए। जब लोगों ने यह सुना, सुनो सुनो, राजा द्वार पर बैठे हुए हैं, तो लोग राजा के निकट आने लगे। इज़राइली अपने अपने घर भाग जा चुके थे। दाविद का यरूशलेम लौटना। इज़राइल के सारे गोत्रों में इस समय इस विषय पर उग्र विवाद छिड़ा हुआ था, राजा ही हमें हमारे शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करते आए हैं, वही हमें फिलिस्तीनियों से मुक्त करते आए हैं, अब वह अबशालोम के कारण देश छोड़कर भाग गए हैं। यहां हमने अबशालोम का राज अभिषेक किया और वह युद्ध में मारा गया, तब अब राजा को वापस लाने के बारे में कुछ क्यों नहीं किया जा रहा? राजा दाविद ने पुरोहित सादोक और अबियाथर के लिए यह संदेश भेजा, आप यहूदिया के पुरनियों से इस विषय में विचार विमर्श करें, राजा को उसके आवास में लौटा लाने के विषय में आप सबसे पीछे क्यों हैं, जबकि सारे इज़राइल इस विषय में राजा तक अपने विचार भेज चुका है। आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप में और मुझ में लहू मांस का संबंध है, तब आप ही राजा की पुनर्स्थापना में पीछे क्यों हैं? अमासा से कहिए, क्या तुम मेरा लहू मांस नहीं हो? यदि योआब के स्थान पर तुम आज से ही स्थायी रूप से मेरी सेना के सेनापति का पद ग्रहण ना करो, तो मैं परमेश्वर के सामने दंड के योग्य रहूंगा। इस बात ने यहूदिया की जनता का हृदय एक सूत्र में बांध दिया। तब उन्होंने राजा के लिए यह संदेश भेजा, आप और आपके सारे सेवक यहां लौट आए। तब राजा लौटकर यरदन नदी तक पहुंचे। तब यहूदिया वासी गिलगाल नामक स्थान पर उनका स्वागत करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें यरदन नदी के पार ले आए। बहुरीम नामक स्थान से बिन्यामीन के एक वंशज गेरा के पुत्र शिमेई यहूदिया के व्यक्तियों को लेकर शीघ्रतापूर्वक राजा दाविद से भेंट करने आ गए। उनके साथ बिन्यामीन वंश के 1000 व्यक्ति भी थे। उसी समय शाऊल का गृह प्रबंधक ज़ीबा भी अपने 15 पुत्रों और 20 सेवकों के साथ ढलान पर यरदन नदी की ओर दौड़ता हुआ राजा से भेंट करने आया। उन्होंने राजा के परिवार को नदी पार करने में सहायता दी और उनकी सुविधाओं के लिए प्रयास करते रहे। राजा नदी पार करने पर ही थे कि गेरा का पुत्र शिमेई आकर राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने राजा से तेज आवाज में विनती की, मेरे स्वामी, ना तो मुझे दोषी ठहराए और ना ही मेरे उस गलत व्यवहार को याद रखे जो मैंने मेरे स्वामी महाराज के यरूशलेम से जाने के अवसर में किया था। महाराज इसे अपने हृदय में ना रखें, आपके सेवक को यह पता है कि मैंने यह पाप किया है, इसलिए यह देखिए, आज मैं ही सारे योसेफ वंश में से पहला हूँ जो महाराज मेरे स्वामी से भेंट करने आया हूँ। जेरुया के पुत्र अभिशाई ने इसके लिए सुझाव दिया, क्या सही नहीं कि जो कुछ शिमई ने किया है उसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाए? उसने यहावे के अभिषिक्त को शाप दिया था। तब जेरुया के पुत्रों दाविद ने कहा, क्या लेना देना है मेरा तुम्हारा? क्या कारण है तुम आज मेरे विपरीत ही जा रहे हो? क्या आज वह दिन है जिसमें इसराइल के किसी भी व्यक्ति को प्राण दंड दिया जाना सही होगा? क्या मुझे यह मालूम नहीं कि मैं इस समय इसराइल का राजा हूं? तब शिमेई से उन्मुख हो राजा ने कहा, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। इसके लिए राजा ने उससे शपथ खाई। शाऊल का पुत्र मेफीबोशेत भी राजा से भेंट करने आया। जिस दिन से राजा ने पलायन किया था उस दिन से राजा के सुरक्षित लौटने तक उसने पैरों का ध्यान ना रखा था, ना अपनी दाढ़ी का प्रसादन किया था और ना ही उसने धुले हुए कपड़े पहने थे। जब वह राजा से भेंट करने यरूशलेम में आया, राजा ने उससे कहा, मेफीबोशेत, पलायन करते समय तुम मेरे साथ क्यों नहीं थे? उसने उत्तर में कहा, महाराज मेरे स्वामी, मेरे सेवक ने मेरे साथ छल किया। आपके सेवक ने उससे कह रखा था, मैं अपने लिए गधे की काठी कसूंगा कि मैं उस पर चढ़कर राजा के निकट जा सकूं, क्योंकि मैं ठहरा अपंग। इसके अलावा उसने महाराज मेरे स्वामी से आपके सेवक के विरुद्ध झूठा आरोप भी प्रसारित कर दी, मगर महाराज मेरे स्वामी, आप परमेश्वर के स्वर्गदूत तुल्य हैं, आपको जो कुछ सही लगे आप वही करें। महाराज मेरे स्वामी के सामने मेरे पिता का वंश मृतकों के समान छोटा था, फिर भी आपने अपने सेवक को उनमें स्थान दिया जो आपके साथ भोजन करने के लिए चुने गए थे। महाराज से इससे अधिक अपेक्षा करने का मेरा अधिकार ही नहीं रह जाता। राजा ने उससे कहा, अब ज्यादा बोलने से क्या लाभ? मैंने यह निश्चय किया है कि तुम्हारे और जीबा के बीच संपत्ति को बांट दिया जाएगा। मेफीबोशेत ने राजा से कहा, आप उसे संपूर्ण संपत्ति ही ले लेने दें, मेरे लिए यह काफी है कि महाराज मेरे स्वामी सुरक्षित लौट आए हैं। रेगेलिम नामक स्थान से गिलादवासी बारजिल्लई भी आए हुए थे। वह राजा के साथ साथ यर्दन नदी तक गए थे कि उन्हें यर्दन नदी पार उतार दें। बारजिल्लई बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, वह 80 वर्षीय थे। राजा के महानाइम पड़ाव के अवसर पर उन्हीं ने राजा की सुरक्षा का प्रबंध किया था, क्योंकि वहां वह अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। राजा ने बारजिल्लई से कहा, आप मेरे साथ नदी पार कर चलिए, यरूशलेम में आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको आश्रय दूंगा। मगर बारजिल्लई ने राजा को उत्तर दिया, और कितने दिन बाकी है मेरे जीवन के कि मैं महाराज के साथ यरूशलेम चलूं? इस समय मेरी आयु 80 वर्ष की है, क्या मुझमें अब यह बोध रह गया है कि सुखद क्या है और क्या नहीं? क्या आपके सेवक में अब भोजन और पेय से संबंधित स्वाद बोध शेष रह गया है? अथवा क्या मैं अब भी स्त्री पुरुष गायक वृंद की प्रस्तुति सुनने में समर्थ रह गया हूँ? तब क्या लाभ है कि आपका सेवक महाराज मेरे स्वामी पर अतिरिक्त बोझ बनकर रहे? आपका सेवक महाराज के साथ मात्र यर्दन नदी पार ही करेगा, पर क्या आवश्यकता है कि महाराज प्रतिफल में यह पुरस्कार दें? कृपा कर अपने सेवक को लौटने की अनुमति प्रदान करें कि मेरा देहांत मेरे ही गृह नगर में मेरी माता पिता की कब्र के निकट ही हो। हाँ, यह किम हाम है, मेरा पुत्र आपका सेवक, उसे ही आज्ञा दे कि वह महाराज मेरे स्वामी के साथ जाए और आपकी उपयुक्त इच्छा पूर्ण करता रहे। राजा ने सहमति प्रदान की, किम हाम मेरे साथ अवश्य जाएगा और मैं उसके लिए वही करूँगा जो आपकी अभिलाषा है, साथ ही मैं आपके लिए भी वही करूँगा जो मुझसे आपकी इच्छा है। इसके बाद सभी यर्दन नदी के पार चले गए। राजा ने भी नदी पार की। तब राजा ने बारजिल्लई का चुंबन लेते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद बारजिल्लई अपने घर लौट गए। राजा गिलगाल की ओर बढ़ते गए। किम्हाम राजा के साथ था। राजा के साथ यहूदिया की सभी सेना और इसराइल की आधी सेना थी। तब इज़राइल के सभी व्यक्ति आकर राजा से कहने लगे, ऐसा क्यों हुआ है कि हमारे भाई बंधुओं यहूदिया वासियों ने चुपके चुपके यरदन के उस पार जाकर राजा और उनके परिवार को और उनके सारे साथियों को यहाँ ले आए हैं। यहूदिया के सभी निवासियों ने इज़राइल के निवासियों को उत्तर दिया, इसलिए कि राजा हमारे निकट संबंधी है, इस पर क्रोध होने का क्या कारण है? क्या हमने अपने भोजन के लिए राजा की धनराशि में से खर्च किया है, अथवा क्या उन्होंने हमें उपहार में कुछ दिया है? यह सुन इज़राइलियों ने यहूदिया वासियों को उत्तर दिया, राजा में हमारे 10 अंश निहित है, तब दाविद पर हमारा अधिकार तुमसे अधिक होता ही है, तब तुमने हमें तुच्छ क्यों समझा? क्या राजा को दोबारा प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले हमारी ओर से ही नहीं आया था? इसमें यहूदिया वासियों के वचन इज़राइलियों के उद्धारों से अधिक प्रभावी रहे।